ओम शांति। तो आज का टॉपिक है फॉलो ब्रह्मा बाबा फादर। शिव बाबा को तो हम कहेंगे कि बाबा आप तो निराकारी हो, आपका तो परिवार नहीं, न मकान चाहिए न खाना चाहिए, तो कहां से आप में कोई विकार हो सकता है। हम तो गृहस्थ में रहते हैं, संसार में रहते हैं, सब सामना करना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा को हमारे सामने एग्जाम्पल रखा, शरीर में रहते अशरीरी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रह कर दिखाए और हमें भाग्य था मम्मा बाबा से मिलने का। तो बाबा की विशेषता थी कि बाबा प्रेम का स्वरूप था, क्योंकि शुरू में तो इतना ज्ञान नहीं था, तो बाबा क्या करता था, दृष्टि देकर सबको शांति सुख प्यार का अनुभव कराता था। और सभी समझते थे बाबा जितना मुझे प्यार करते हैं शायद किसी को नहीं करते होंगे, पर बैलेंस था, प्यारा भी था न्यारा भी था। उनके परिवार से शुरू में तो पांचों बच्चे और युगल यशोदा मैया सब ज्ञान में थे, पर धीरे धीरे बड़े लड़के ने छुट्टी ली, छोटे लड़के ने छुट्टी ली, छोटी लड़की ने छुट्टी ली, बाबा को बिल्कुल मोह नहीं था बच्चों में, क्योंकि जब उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया और 8 बहनों को ट्रस्टी बनाया अपनी प्रॉपर्टी का, तब बच्चों से पूछ के किया कि मेरा ये विचार है, आपको मंजूर है? सभी ने कहा भले। तो सारी प्रॉपर्टी यज्ञ को समर्पित कर दी। तो जब नारायण दादा छुट्टी ले रहा था, बाबा ने कहा तुम तो कुछ लाया नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, 5 रुपया देकर अहमदाबाद तक की टिकट करा दी। तो न्यारा भी था, यज्ञ में निर्मल शांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी उसके परिवार की थी, परंतु उन्होंने मम्मा को यज्ञ माता बनाया, क्योंकि मम्मा ज्ञान में गुणों में संपन्न थी और अव्यक्त होने के बाद भी मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी को यज्ञ की डोर सौंपी। दूसरा बैलेंस था नम्रता और नशा का। एक तरफ नम्र थे, कहते थे मैं बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं, और कभी उनकी गद्दी पर हम लोग भी बैठकर क्लास कराते थे, ऐसे नहीं कि उनकी गद्दी स्पेशल थी। और कहता था कि तुम बच्चे मेरे से भी पूछो, कभी पब्लिक टॉक देने नहीं गए, बच्चों को तैयार करके भेजते थे। पर नशा भी था, कल जाकर मैं कृष्ण बनूंगा। मैं बाबा का सिकिलधा बच्चा हूं। फिर बैलेंस था बालक और मालिक। मालिक बन के निर्णय करते थे क्या करना है क्या नहीं, पर बालक बन के सबका ओपिनियन भी पूछते थे। विशेषतर उन दिनों में जगदीश भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, निर्वैर भाई आदि मुख्य चार भाई थे, तो बाबा उनसे भी राय लेते थे। और यदि वो ठीक समझते थे तो अमल में लाते थे। तो शुरू से बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहां भी रजिस्टर नहीं किया गवर्नमेंट में। फिर रमेश भाई ने राय दी टैक्सेशन के कारण कि आप ट्रस्ट बनाओ। तब 1968 में ट्रस्ट बनाया। फिर उनमें उदारता और इकोनॉमी का बैलेंस था। उदार ऐसे थे कि जो भी बाबा के कमरे में जाते थे उनको ज्ञान धन जरूर देते थे। हम लोग कभी कभी बाबा के कमरे में 5:30 बजे शाम को जाते थे, तो उस समय बाबा खटिया पर आंगन में लेटे हुए थे, क्योंकि उनका जो अभी कमरा है जहां हम जूते उतारते हैं बाबा कर्म के, वहां जैसे सिर्फ 3 दीवार थी, ऊपर से खुला था, तो हम लोग वहां बाबा खटिया रखते थे और शाम को वहां विष्णु के पोज में आराम करते थे। हम जाते थे तो कुछ न कुछ ज्ञान के पॉइंट सुनाते थे। कभी कभी पांडव भवन के कोर्टयार्ड में चलते चलते वहां जाते थे कंस्ट्रक्शन देखने, तो भी रास्ते में कोई मिला ज्ञान की पॉइंट सुना देंगे। तो ज्ञानी तो आत्मा थे और इकोनॉमी भी थी, स्पेशली जब बेगरी पार्ट था तो इकोनॉमी बहुत करनी पड़ती थी। तो बाबा कहते थे कम खर्च बाला नशे, और दादी जानकी भी क्या करती थी कि कहाँ कुछ प्रिंटिंग कराना होता था ना, तो प्रेस के मालिक को मिलने जाती थी और हम क्या सेवा करते हैं वो सुनाकर कभी फ्री में, कभी कंसेशन में, प्रिंटिंग कराती थी या कुछ खरीदारी करती थी आदि आदि। तो बाबा को बहुत पसंद आता था। और हम लोग भी जब खरीदारी करके बम्बई दिल्ली से एप्पल फल वगैरह, क्योंकि यहाँ तो आबू में तो फल कुछ नहीं बनता है, तो बम्बई दिल्ली से फल लाते थे। तो बाबा प्राइस पूछता था, क्या प्राइस दी, और बाबा को मालूम होता था क्या क्या प्राइस है, क्वालिटी क्या है, देखता था। यदि क्वालिटी ठीक नहीं थी या प्राइस ज्यादा दी थी तो बाबा कहते थे बुद्धू है। फिर बाबा के पास बैलेंस था रॉयल्टी और सादगी। सिंपल भी थे, ड्रेस बदला नहीं, ज्ञान में आने के बाद वही धोती और कुर्ता पहनते थे। और पर रॉयल थी, उनका उठना बैठना चलना सब रॉयल। फिर बैलेंस था गंभीरता और रमणीकता का, क्योंकि ज्ञान की पॉइंट्स सबको सुनाते थे तो नेचुरली है गंभीरता से सुनाते थे। परंतु रमणीक भी थे। क्या होता था कि दादी प्रकाशमणि बम्बई में आई, तो बम्बई में 64 में आई, तो शुरू शुरू में इतनी सेवा नहीं थी। तो बाबा ने मरी हुई मक्खी एनवलप में पोस्ट की कि तुम मक्खी मारती है ना, और हम 1 अप्रैल को यहां से निकलते थे ना, तो लच्छू दादी उस समय ब्राह्मणी थी बाबा की, तो हम लोग एक बारी टैक्सी में बैठ गए जाने के लिए, तो लच्छू दादी दौड़ती दौड़ती आई, बाबा ने आपके लिए गरम गरम पकोड़े भेजे हैं। और पकोड़े खोले तो अंदर मूंगफली के छिलके, बाहर से बेसन पर अंदर मूंगफली के छिलके, कभी रुई। फिर बाबा के ऊपर इतनी जिम्मेवारी थी, क्योंकि बांधेलियां पत्र लिखती थी, किसी को भी प्रॉब्लम होता था आते थे राय लेने, तो जिम्मेवारी तो सारे यज्ञ की थी। शुरू से आप देखते हैं कितना सामना करना पड़ा, परंतु बाबा की अवस्था एक रस। अपने को निमित्त ही समझते थे कि शिव बाबा का यज्ञ है, और कभी फोटो लेने नहीं देते थे, क्योंकि कहते हैं कि इसको क्यों याद करना है, शिव बाबा को याद करना है, फोटो नहीं लेना है। बेफिकर बादशाह थे, क्योंकि फिकर नहीं थी कल क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि बेगरी पार्ट में एक दिन बिल्कुल पैसा नहीं था, गेहूं का आटा नहीं था, कुछ नहीं था। तो भोली दादी ने यीशु दादी को कहा कि आज तो गेहूं का आटा नहीं है। यीशु दादी ने देखा कि भंडारी में तो कुछ पैसा नहीं है, पर बाबा को चिंता नहीं थी। बाबा ने कहा वेट, पोस्ट आने दो। और पोस्ट में पैसे आ गए, टाइम पर रोटी बन गई, टाइम पर बेल लगा। तो एक तरफ बेफिक्र थे और दूसरे तरफ सब चीज संभाल के यूज करना, केयरफुल। समझो, सोचना, बोलना, करना, ऐसा ना हो जो किसी को दुख हो। सबके लिए प्यार, सबके लिए शुभ भावना, और कभी किसी को डांटना नहीं। उनकी दृष्टि हमेशा बेहद की थी। मैं प्रजा का पिता हूं, सबका बाप हूं, और चाहे ब्राह्मण है, चाहे मिनिस्टर है, चाहे कुत्ता है, चाहे चिड़िया है, सब बच्चे बच्चे। लेबरर को भी कभी देखते थे ठंडी में उनके पास गरम नहीं है, तो फौरन लच्छू दादी को कहते थे, लच्छू बच्ची इसको कुछ गरम दे दो। और तब से आपने देखा होगा यहाँ सिस्टम है मधुबन में, हर सर्दी के दिनों में हर एक मजदूर को एक एक ब्लैंकेट मिलता है। और गर्मी के दिनों में दिन में 10 बजे के बाद बाबा झोपड़ी में बैठता था, तो उनका टाइम एक ही होता था जैसे हमेशा का। तो एक चिड़िया आती थी, तो बाबा कहता था लच्छू बच्ची इस बच्ची को टोली दो। उन्होंने लौकिक और अलौकिक का भी बैलेंस रखा। लौकिक साथ में थे, परंतु अलौकिक दृष्टि और अलौकिक संबंध, सब बच्चे बच्चे। तो यशोदा माँ को भी बाबा को बाबा बाबा कहना पड़ा, पति को बाबा कहना, बाप कहना सहज नहीं। और मम्मा की माँ मम्मा को मम्मा कहती, और दादियां भी संजो ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी एक साथ पांडव भवन दिल्ली में रहते थे, परंतु उनका संबंध अलौकिक, क्योंकि गुलजार दादी हेड थी दिल्ली की, तो ऑलराउंडर दादी उसको उसी रीत से रिस्पेक्ट देती थी। बैलेंस योग और सेवा का कि बाबा सेवा का भी अथक सेवादारी थे, और हमेशा क्या सेवा करनी है, करानी है, उसके मनन मंथन चिंतन करता रहता था और डायरेक्शन मुरली में देता था। तो योग में भी निरंतर बाबा रहता था। और बाबा कहते शरीर की भी संभाल करो तो आत्मा की भी संभाल करो। ऐसे नहीं कि घर में रह के सारा गृहस्थी का काम करते रहो और मुरली के लिए टाइम नहीं या योग के लिए टाइम नहीं, नहीं, आत्मा की भी उन्नति करो और शरीर को भी 6 घंटा रेस्ट दो, 3 टाइम खाना दो और बीमार है संभाल करो, दवाई दो। तो बाबा का नंबर 1 क्यों हुआ? ज्ञान में मनन मंथन चिंतन धारण करते रहे, जब भी फ्री होते थे बाबा की याद में मस्त हो जाते थे, निरंतर योगी। उन्होंने सर्व समर्पण कर दिया, तन मन धन सब समर्पित कर दिया। तन भी 93 वर्ष की उम्र तक सेवा करते रहे, अंत तक सेवा की। अंत में 18 जनवरी 69 में सवेरे मुरली नहीं सुना सके, रात को सुनाए। और उनकी यही इच्छा थी कि हम बैठे बैठे शरीर छोड़े, तो उसी अनुसार बैठे बैठे शरीर छोड़ा। एक भी दिन सेवा विशेष नहीं ली, बीमार नहीं रहे। पवित्रता अर्थात निर्विकारी जीवन उन्होंने बनाया। भल कोई कहेंगे वे उनकी तो 60 वर्ष की उम्र हो गई थी, तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना तो सहज है, परंतु नष्ट मोहा, कोई लोभ नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, और अटूट निश्चय शुरू से लेकर कभी भी बाबा में निश्चय कम नहीं था। ड्रामा में निश्चय, अपने में निश्चय और शिव बाबा में निश्चय। तो निश्चय होने के कारण निश्चिंत रहते थे, नशे में रहते थे और शिव बाबा के लिए अटूट प्रेम था। इस कारण नंबर 1। तो अभी हमें क्या करना है? हर कदम, हर बोल, हर संकल्प, हर कर्म में बाप समान बनना है, या उसको फॉलो करना सहज है। कदम कदम पर चलना सहज है, कॉपी करना सहज है ना? उनको तो सारा सब अपने आप से धारण करना पड़ा, लेकिन हमारे लिए तो एग्जाम्पल कई हो गए। अम्मा बाबा दादियां आदि। तो इसलिए हमें देखना है, हम जब बोलते हैं, बाबा कहते हैं ना, मीठा बोलो, कम बोलो, सोच समझ के बोलो, किसी को भी अपने शब्दों से दुख ना दो। सदा अशरीरी निराकारी स्थिति में रहना है। कर्म बंधन से मुक्त रहना है। कर्म संबंध निभाते रहना है। देह में रहते विदेही स्थिति, मन की लगन में मगन रहना है। बाबा की याद में मग्न रहना है। और बाबा का हमेशा लक्ष्य था कि धन को पूरा सफल करना, एक भी पैसा असफल ना हो। हमें ब्रह्मचारी तो बनना है, पर ब्रह्माचारी बनना है, जो ब्रह्मा के आचार विचार थे उसको फॉलो करना है। और बाबा जो ज्ञान देते थे, यानी मुरली चलाते थे सत्यता की ऑथोरिटी से, भारत में आकर कहना भारतवासियों को के धर्मशास्त्र भूलो, गुरुओं को छोड़ो, मंदिर में जाना छोड़ो, ऑथोरिटी थी, जो मुरली में भी कह सकते थे बाकी सबको भूलो, एक मुझे याद करो। पर ऑथोरिटी के साथ साथ स्नेह था, अहम नहीं था और निर्माणता थी। तो निर्माणता ही महानता है। शुरू शुरू में बाबा को सेवा समाचार सुनने का शौक था। प्यार से पूछते थे, किसके पास गए, क्या किया, क्या सवाल किया उन्होंने, तुमने क्या जवाब दिया आदि आदि। जब मुंबई में आते थे तो रमेश भाई उनको हैंगिंग गार्डन ले जाते थे। फिर बाबा कहते थे फलाने सेठ को जाकर सेवा करो। फिर सेवा करके आता था तो पूछता था कि क्या पूछा, तुमने क्या समझाया आदि आदि। पर अंत में क्या होता था कि बाबा को सेवा समाचार में भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। कहते थे शॉर्ट में सुनाओ, या एक घंटा कोई कुछ समाचार सुनाता था तो सिर्फ 3-4-5 मिनट सुनता था, अंत में कहता था बच्ची क्या सुनाया। तो एकांतवासी बाप की याद में ये समाचार सुनते थे, 5 मिनट सुनकर सुनाने वाले को खुश कर देते थे। तो बाबा सर्व के सहयोगी थे, स्नेही थे, गुण ग्राहक थे। तो हमें फॉलो फादर करना है, किसी का प्रभाव में नहीं आना, गुण ग्राहक बनो। बेहद का वैराग्य हो, पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई तो हमारा बुद्धि योग नई दुनिया में हो। नई दुनिया में सब कुछ मिलेगा, अच्छे अच्छे वस्त्र मिलेंगे, अलंकार मिलेंगे, विमान होगा हमारे महल के पास, चाहे नौकर है, चाकर है, सेठ है, शाहूकार है, राजा है, सब सुखी होंगे, सबके पास सब कुछ होगा। इसलिए इस दुनिया में हमारा कोई भी लोभ लालच मोह ममता ना हो, चाहिए की इच्छा ना हो, और कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल हो। ऐसे नहीं आंखें देखे कि ये चीज बहुत अच्छी है, साड़ी लेटेस्ट फैशन की है, कितनी भी साड़ियां पड़ी है खरीद ली, नए नए प्रोग्राम में नया नया ड्रेस पहनना है। आजकल तो कई माताएं जब भी शादी में जाना है पहले हेयर ड्रेसर के पास जाके ब्यूटी सलून में अपने आप को वो करती है, तो ये ना हो, क्योंकि हम है राज ऋषि, रॉयल भी हो पर ऋषि, तो बाबा सबको विशेष बनने का उमंग उल्लास दिलाता था। रोज मुरली में कहते हैं कि तुम सत्युगी राज अधिकारी बनेंगे, मालिक बनेंगे, तो उमंग उल्लास दिलाते रहें और हिम्मत दिलाते रहें। जो ना उम्मीद थे उनको उम्मीदवार बनाया, सेवा के योग्य बनाया, उनके बोल अनमोल मधुर और युक्तियुक्त होते थे, तो हमारे भी ऐसे होने चाहिए। सहनशीलता गुण धारण करके मौज में रहते थे, असंतुष्ट आत्मा उनके सामने आती थी उनको संतुष्ट करते थे, और साइलेंस की पावर से सबको आगे बढ़ाया। और मधुबन में जो भी आते थे उनको स्थूल और सूक्ष्म सौगात जरूर मिलती थी, जैसे आप लोगों को भी मिलती है, या जब भी आते हैं, कोई भी आते हैं, एक दिन भी रहेंगे सौगात जरूर मिलेंगे, और ज्ञान धन तो पूरा मिलता है। और हर कर्म साक्षी दृष्टा बनकर करो, तो दिल में दुख नहीं होगा, व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, ये क्या, ये क्यों, ये कैसे, वैसे। और त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो तो रिजल्ट पहले से मालूम हो जाए ना कि ये कर्मों का रिजल्ट क्या होगा, मैं ये बोलती हूँ उसका असर सामने वाले व्यक्ति पर क्या पड़ेगा, तो पाप कर्म नहीं करेंगे। और बाबा की अवस्था एक रस, गुण दान देते रहे, ज्ञान धन भी देते रहे और अंत में कर्मातीत स्टेज में ब्लेसिंग देते रहे, तो उन्हों के जीवन में बैलेंस होने के लिए, होने के कारण ब्लेसिंग मिलती थी और ब्लिसफुल रहते थे, आनंदित रहते थे। और हरेक को गुण दान देना, शक्तियां देना, ज्ञान देना, महादानी दान करते रहे ताकि सब भरपूर रहे। बाबा कहते हैं ना, देने वाला तो देता रहता है, लेने वाले कितना लेते हैं उनके ऊपर, अपने ऊपर रहता है। तो बाबा ने अपने पास जो भी खजाने थे खुले रख दिए थे, जैसे शिव बाबा कहता है कभी भी आओ हमारे पास परम नाम में। मंदिरों में टाइम होता है, सवेरे इतने बजे खुलेगा, दिन में इतने बजे खुलेगा, शाम को इतने बजे खुलेगा, लेकिन शिव बाबा के परम धाम में हम कभी भी जाए, बाबा का दरवाजा खुला है। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे।